ओम शांति। जीवन की इस अनंत धारा में सतत बहते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, हर एक चाहता है कि हर दिन हम कल से आगे हो और हर आने वाला कल हमें आज से आगे देखे। परंतु ये चाहना होते भी कई बार व्यक्ति संसार को छोड़कर जब अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ता है तो ऐसी कुछ बातें होती है कि जिस वजह से वो गिर जाता है। जिस उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ना चाहता था, जिस लक्ष्य से वो आगे बढ़ रहा था और जिन धारणाओं को उसने अपनाया था, वही मूलभूत धारणाएं जब खंडित हो जाती है तब व्यक्ति एक फॉल का अनुभव करता है, गिरने का अनुभव करता है। अध्यात्म की भाषा में इसे द वेनिंग इफेक्ट ऑफ मून, जैसे चंद्रमा की चढ़ गिरती कला होती है, जैसे किसी कंकड़ को पानी में फेंक दो तो आवाज आती है छपाक, ये छपाक की आवाज, ये वेनिंग इफेक्ट ऑफ द मून, ये फॉल फ्रॉम द ग्रेस। कभी तो बहुत ऊंची अवस्था पाई थी और फिर अचानक एक दिन उस अवस्था से, उस धारणा से, उस सिद्धांत से, उस लक्ष्य से चेतना गिर पड़ती है। कारण कोई भी हो, पर जो जो अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता है उसे कभी ना कभी स्थिति का अनुभव आता है, होता है। दुनिया भर में जितनी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, जितने सन्यासी हैं, जितनी नंस, फादर्स, भिक्षु, भिक्षुनियां, अन्य अन्य धर्मों में, अन्य अन्य मठों में, पंथों में, हर एक जो अध्यात्म में आगे बढ़ता है और लंबा समय उसमें चलता है और एक दिन अचानक गिरावट, एक दिन अचानक फॉल, एक दिन अचानक वो छपाक की आवाज, रिलैप्स, जो गलती बहुत पहले छोड़ दी थी वो फिर करना, जो भूल, जो पाप, जो विकर्म, जो आदत, जो वासना, जो अब थी ही नहीं, अचानक उसका उभर कर आ जाना। और ऐसे समय व्यक्ति लॉजिक देता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और झूठ का प्रवेश होता है, वो लड़ता है। उसे अंदर पता है गिरावट हो चुकी है, उसे अंदर पता है वो गिर चुका है, उसे अंदर पता है पतन हो गया है, परंतु लॉजिक, रैशनलाइज, तर्क वितर्क करता है। अगर कोई पूछे तो स्पष्टीकरण देता है कि मैं ही सत्य हूं और जो चल रहा है ठीक चल रहा है, पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, परंतु अब कुछ भी ठीक नहीं है। एक व्यक्ति किसी मछुआरे के पास आता है और उस मछुआरे से कहता है कि सुनो, मैं जीसस क्राइस्ट हूं, फिर आ गया हूं वापस। वो मछुआरा कहता है, जीसस क्राइस्ट, उसको मरे 2000 वर्ष हो गए, तुम कैसे आ गए? वो कहता है तुमने सुना नहीं, जब उसे सूली लगाई गई थी और सूली लगाने के 3 दिन के बाद वो लौट कर फिर आया था, रिजरेक्शन। वो मछुआरा कहता है हाँ। वो कहता है वही मैं हूं, तब से मैं जिंदा हूं और धरती पर घूम रहा हूं, फिर रहा हूं। वो मछुआरा कहता है बिल्कुल नहीं मान सकता मैं, ये हो ही नहीं सकता, या तो तुम पागल हो या मुझे बना रहे हो। वो व्यक्ति दावा करता है मैं हूं। वो मछुआरा कहते हैं अगर तुम हो तो वो चमत्कार करके दिखाओ जो जीसस क्राइस्ट ने किए थे। वो व्यक्ति पूछता है बोलो कौन सा चमत्कार करना है। वो मछुआरा कहता है ये है समुद्र, चल के दिखाओ इसके ऊपर। वो व्यक्ति चलना चालू करता है और थोड़ा देर चलते ही डूबने लगता है और बड़ी मुश्किल से वो मछुआरा उस डूबते हुए जीसस क्राइस्ट को बचाता है, बाहर लाता है। मछुआरा पूछते अब क्या हुआ, तुम जीसस क्राइस्ट थे ना। वो कहता जीसस क्राइस्ट तो मैं अब भी हूं, पर मेरी जो चप्पल है ना वो तब से पहना हुआ, और वो जो चप्पल है 2000 साल से धरती पर घूमते घूमते उसमें छेद हो गए और उसकी वजह से मैं डूब गया। व्यक्ति हर तरह का लॉजिक दे सकता है और यही सिद्ध करेगा कि मैं ही सत्य हूं, जबकि अंदर उसे पता है वो गिर चुका है। अंदर उसे पता है जो मूलभूत धारणा है जिसके आधार पर वो चल रहा था उससे वो गिर चुका है। द फॉल फ्रॉम ग्रेस अंग्रेजी में शब्द है, द फॉल फ्रॉम ग्रेस। इस बात को कभी ना भूलना कि हम जो ज्ञान में चल रहे हैं और हम जो यहां बैठे हैं, हम जो इस समय मधुबन के वायुमंडल में हैं, क्योंकि परमात्मा का वरदानी हस्त यहां है। ये हटते ही बुद्धि फिर जाती है। बाबा ने कहा है दिव्य बुद्धि की चाबी मेरे पास है, जिस दिन वो चाबी ले लेगा हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और फिर हम जो कुछ करेंगे वो ज्ञान के विपरीत होगा, परंतु फिर भी तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। एक व्यक्ति एक साइकेट्रिस्ट के पास आता है, मनोचिकित्सक के पास, और कहता है कि मैं मर चुका हूं क्या करूं। मनोवैज्ञानिक कहता है तुम मर गए हो फिर बोल कैसे रहे हो। वो कहता है ये मेरा पक्का दावा है कि मैं जिंदा हूं ही नहीं। उसे बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करता है वो मनोचिकित्सक कि तुम मरे नहीं हो, मरने के कोई लक्षण तुम में नहीं है, परंतु वो मानने को ही नहीं तैयार। वो कहता है मैं मर चुका हूं मतलब मर चुका हूं बस। वो मनोचिकित्सक कहता है तुम ये तो मानते हो कि अगर कोई मुर्दे को कोई चोट की जाए तो खून आएगा कि नहीं आएगा, क्या कहते हो। वो कहता है नहीं आएगा। वो उस पेशेंट को ले जाता है, बिठाता है आईने के सामने, एक सुई लेता है और उसको चुभाता है जोर से और वहां से खून आने लगता है, क्योंकि इस व्यक्ति का दावा यह था मैं मर चुका हूं और बहुत पहले मर चुका हूं। वो कहता है देखा खून आ रहा है ना, इसका मतलब। वो व्यक्ति कहता है अच्छा अब समझा कि मुर्दे को भी खून आता है इसका मतलब। मतलब मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, चाहे तुम अपने सिद्धांत बदल दो, परंतु आई एम राइट। तो ये ज्ञान का मार्ग, ये योग का मार्ग, ये साधना का मार्ग, ये तपस्या का मार्ग, ये ब्रह्मा कुमारी जीवन का मार्ग, ये ब्रह्मा कुमार जीवन का मार्ग इतना सहज नहीं है, और इस मार्ग के लिए बाबा ने एक शब्द का प्रयोग किया है, उसी शब्द पर आज की पूरी क्लास होगी। ये है तिरकनबाजी, ये है तिरकनबाजी। तिरकनबाजी अर्थात द स्लिपरी पाथ, वो मार्ग जहां पर पिसल सकते हैं। द स्लिपरी गेम तिरकनबाजी, बाजी अर्थात चाल, चाल चलना। लेटेस्ट में यह शब्द आया था साकार मुरली 21 अप्रैल 2022। बाप कहते हैं मैं भी भूल जाता हूं, मुझे भी बाप भूल जाता है। वास्तव में यह है कठिन मार्ग, इसे कहते हैं तिरकनबाजी। अभ्यास की आवश्यकता है, याद की यात्रा को बढ़ाओ। इन्वर्टेड कॉमा 21 अप्रैल 2022 की साकार मुरली में यह शब्द आया था। इंग्लिश ट्रांसलेशन, दिस इज स्लिपरी गेम। ये खेल कैसा है, स्लिप हो जाते हैं यहां पर। कोई कितने भी साल से इस ज्ञान में चल रहा हो, कितनी भी पवित्रता की धारणा हो, कितना शक्तिशाली अमृत वेला हो, कितना मुरली चिंतन हो, क्लास कराना हो, क्लास को समझना हो, सब कुछ करते हैं, सेमिनार वर्कशॉप कोर्सेस, परंतु उसके बावजूद भी इसमें गिरना होता है। और हमें यह समझना होगा कि गिरते क्यों है। गीता में एक श्लोक है जिसमें अर्जुन पूछता है, कृष्ण मुझे बताओ उस योगी का क्या होता है जो योग भ्रष्ट हो जाता है। योगी है जिसने संसार छोड़ दिया, संसार का संन्यास ले लिया और अध्यात्म मार्ग पर चल रहा है, परंतु अध्यात्म मार्ग में चलते चलते भी एक दिन पथ भ्रष्ट हो जाता है, उसकी क्या गति है। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं वो अपने अगले जन्म की साधना वहीं से चालू करेगा। जैसे कोई बच्चा है माउंट आबू में पढ़ता है, पांचवी क्लास में उसके पिताजी की ट्रांसफर हो जाती है अहमदाबाद, कहां एडमिशन लेगा, सिक्स्थ, क्योंकि फिफ्थ तो हो चुका है। अगली एडमिशन कहां से होगी, सिक्स्थ से। इसलिए पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, चाहे गिर भी जाए, चाहे रुक भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु धारणाओं को नहीं छोड़ना। छोड़ चलते चलते यदि शरीर भी छूट जाए तो अगले जन्म की यात्रा वहीं से चालू होगी। ज्ञान अविनाशी बीज है, नष्ट नहीं हो सकता, आत्मा में समाया रहेगा, डीप विद इन। तो यह तिरकनबाजी है। अभी अभी हम एक किताब में पढ़ रहे थे किसी दूसरी संस्था के बारे में, एक सन्यासी जो 40 साल तक उस संस्था में रहा, 50 years, और फिर कुछ फाइनेंशियल करप्शन उसके द्वारा हुआ, जहां का मूल सिद्धांत दो ही है, कामिनी कांचन, काम विकार और धन लोभ, इसके द्वारा अगर कोई पाप होता है तो उस संस्था में उसे रखा नहीं जाता। सेंशुअल मिसकॉन्डक्ट, फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट, वो सन्यासी 40 साल तक रहा, बहुत पॉपुलर, और अभी अभी उसने शरीर छोड़ा था तो जो मुख्य संस्था है उन्होंने एक छोटा सा कॉलम अपनी आर्टिकल में भेजा कि ये हमारे साथ था और अभी इसने शरीर छोड़ा, क्या कारण है। कि लंबा समय रहने के बाद भी या कम समय में भी व्यक्ति फिसल जाते हैं, क्योंकि मार्ग ही स्लिपरी है, स्लिपरी गेम। बाप कहते हैं कि यह ज्ञान पारे मिसल है, उड़ जाता है, अभी भी है, अभी भी चला गया, विकर्म कर लिया फिर पश्चाताप। पर क्या करे, अगर विकर्म होता है तो क्या पश्चाताप करते रहे, फिर विकर्म, फिर पश्चाताप, फिर विकर्म, फिर पश्चाताप, क्या किया जाए। क्योंकि विकर्म बहुत सूक्ष्म है और वो समझ में भी नहीं आता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये जो फिसलना है इसके कई सारे कारण हैं और हर एक अपने कारण को जानता है, और सभी भट्टी में इसलिए भी आए हैं कि अपने मन की चेकिंग करे सूक्ष्म, अपने मन की टेंडेंसीज की स्टडी करे, अपने मन के पैटर्न को स्टडी करे, अपने मन में जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो संस्कार है, जो जटिल संस्कार है, इतने जटिल जो हमें भी नहीं पता वो है क्या, उनकी स्टडी। मेडिकल में पहले पेशेंट का डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है। जब तक डायग्नोसिस नहीं तब तक ट्रीटमेंट भी नहीं, या ट्रीटमेंट अगर हो तो गलत होगा। परंतु अध्यात्म में ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डायग्नोसिस, निदान। निदान हो जाना अर्थात ट्रीटमेंट, या फिर कहो डायग्नोसिस अगर कर दिया तो ट्रीटमेंट हो गई। यदि कोई ये मान लेता है कि मुझ में क्रोध है और गहराई से मान लेता है और पूर्ण समझ के साथ मान लेता है, उसी दिन उसी क्षण उसी पल वो क्रोध से मुक्त हो जाएगा। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम, संपूर्ण समझ संपूर्ण मुक्ति है। मुरलियों में एक ही शब्द आता है, सारी अव्यक्त वाणियों में मुरली चलती है, पैराग्राफ के लास्ट में समझा। सोचने की बात है, सामने वाला बार बार पूछता है समझा समझा समझा, अर्थात किसी ने कुछ भी नहीं समझा। वो इनडायरेक्टली ब्रैकेट में ये बताना चाहता है, परंतु हम खुश होते हैं आह, पर वो कुछ और कह रहा है। पूरी मुरली चलती है और फिर पूछा जाता है समझा समझा समझा, कुछ भी नहीं समझा। अगर समझा होता तो जाग गए होते, अगर समझा होता तो रात में फिर नींद नहीं आती, उठ गए होते सुबह सुबह प्रातः स्मरामि। अगर समझा होता तो मुरली के दीवाने होते दादी जैसे, अगर समझा होता तो कैसी प्यास होती, कैसी लगन होती, कैसी आग होती, कैसी जीवन में प्रतिबल क्रांति होती। अभी तो मन भोग विलास में कहीं ना कहीं डूबा हुआ है, स्वाद में, स्पर्श में, नजारे देखने में, साइट सीइंग में, चेतना विरक्त हो जाए, उसे कुछ और मिल जाए, यह संसार का लड्डू छोटा हो जाए। और प्रभु प्रेम का बड़ा लड्डू जब तक नहीं मिलता तब तक ये छूटेगा भी नहीं। तो फिर कह रहे ये मार्ग बहुत स्लीपरी है, बहुत ध्यान रखता है कोई व्यक्ति, एक एक पल का ध्यान रखता है, उसके बाद में भी फिसलता है। कोई बहुत तेज फिसलता है, कोई धीरे से फिसलता है, कोई फिसल के समझ जाता है, कोई समझता ही नहीं, कोई फिसल कर भी ये दिखाता है कि मेरा सब ठीक चल रहा है, क्योंकि इज्जत का भी तो सवाल है। फिसलने के हम आठ कारण आज देखेंगे, आठ या फिर 16 अगर समय मिला तो। पहला कारण, फिसलते हम तब है जब रास्ते पर काई हो, काई पता है, काई जम जाती है रास्ते पर, कोई आ रहा है उधर से और काई है, स्लिप। अध्यात्म के मार्ग पर पहला कारण है फिसलने का विकारों की काई, या फिर कहो काम विकार की काई। कपड़े बदल लिए परंतु शरीर तो वही है, वो हॉर्मोन्स, वो बायोलॉजी, वो उत्तेजनाएं, वो वही है, वो आकर्षण। ज्ञान सुनना सुनाना, क्लास करना कराना, ये भी एक बुद्धि विलास है और वाणी विलास है। और बुद्धि विलास और वाणी विलास मात्र से संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते। अंग्रेजी में कहते हैं शरीर में जो हार्मोन्स है, मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, द हार्मोन्स हाईजैक द इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का अपहरण कर लेते हैं ये हार्मोन्स। ज्ञान योग सब बाजू में रह जाता है, इतना तीव्र और प्रचंड वेग है। और इसलिए यदि इस वेग को रोकना है तो केवल बुद्धि के तल पर ज्ञान को समझने से, धारण करने से नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा जो शरीर के तल पर है। और शरीर के तल पर जो है वो है भोजन। जितना गरिष्ठ, जितना भारी, जितना पका हुआ इस शरीर में जाएगा उतनी ही उत्तेजनाएं होगी, और जितना ही हल्का और सूक्ष्म इस शरीर में जाएगा अपने आप वो हार्मोन सारे शांत होंगे। वो एक्साइटमेंट, वो अर्जेस, वो क्रेविंग, वो तलब, वो प्यास, वो वासना, इनको केवल ज्ञान के बल पर शांत नहीं किया जा सकता। हाँ, कोई कोई होगा जो किसी जन्म जन्म के जो योगी है, जिनका जन्म से ही उन्हें वैराग है, जन्म से ही कहीं आंख डूबी ही नहीं, जन्म ही वैराग के साथ हुआ है, जन्म से ही प्रभु प्रेम के प्रति एक नेचुरल आकर्षण है, संसार के कीचड़ और दलदल और वासनाओं की चक्की में जो कभी पिसे ही नहीं, बचपन से ही उनमें वो बीज है पूर्व जन्म के संस्कारों का, उनमें शायद ये ऐसी उत्तेजनाएं नहीं होगी। पर बाकी सभी आम जन जो संसार के धक्के खा खा के फिर अध्यात्म में आए हैं, सांसारिक जीवन जिया और फिर बाबा के बने, या फिर बचपन से चल रहे थे परंतु ऐसे ही ढीले ढाले, और एक दिन अचानक स्ट्राइक हुआ कि क्या है, मुझे अपना जीवन इस यज्ञ में समर्पित करना है, यह संकल्प जिस दिन आया और जिस दिन सीरियसनेस जागी, तब तो विकारों को जीतने का सबसे पावरफुल मार्ग, टूल, भोजन पर संयम। बाकी सारे मार्ग आप सबको पता है, ज्ञान का, योग का, धारणा का, सेवा का, प्रभु प्रेम का, वैराग का, डिटैचमेंट का, भट्टियों का, उस सब की चर्चा तो सब जगह हो ही रही है। परंतु यदि चाहते हैं कि बहुत तेज गति से उन्नति हो जाए अध्यात्म में, और अध्यात्म में उन्नति के लिए चाहिए क्लीन स्टमक, खाली पेट, यह जितना भरा रहेगा और शरीर में जितनी जड़ता होगी उतनी आत्माभिमानी स्थिति नहीं हो पाएगी। हमें यह क्यों नहीं बोलना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, स्त्री को यह क्यों नहीं बोलना पड़ता मैं स्त्री हूं, वो नेचुरल है, परंतु आत्मा समझने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करते तो भी नहीं हो पाता। क्यों? हम हमेशा उदाहरण देते मधुबन के आंगन में कोई 20 साल पहले मिला था और उसने हमें एक पर्स दी थी। हम पूछते हैं किसने पर्स दी थी, हम कहते उसने। वो कौन था, कौन सी बहन, क्या पहना हुआ था, कपड़े उसके याद नहीं है, नाम क्या था, नाम उसका याद नहीं, कितने बजे दिया था, कौन सा समय था वो याद नहीं, दिन याद नहीं, कहां एग्जैक्टली मधुबन के आंगन में दिया था वो भी याद नहीं, उम्र क्या थी उसकी वो भी याद नहीं, नाम तो याद ही नहीं, पर वो स्त्री था या पुरुष ये याद है, ये हम कभी नहीं भूलते। ये भूलता है कोई, अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो पुरुष हूं, ऐसा होता है कभी नहीं, जबकि इसके किसी अन्य जन्म में हम और भी रहे कुछ कुछ, कभी स्त्री कभी पुरुष, परंतु फिर भी इस जन्म का यह संस्कार कितना पक्का है और दिन रात हमको मेहनत करनी पड़ती है, आत्मा हूं आत्मा हूं, फिर भी तिरकनबाजी स्लिप, फिर भी भूल जाता है, याद ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कुछ तो है जिसने हमें शरीर से बांध रखा है, आत्मा और शरीर दोनों के बीच में है भोजन। जब तक इसको हल्का नहीं करेंगे, आत्मविमानी स्थिति जो करना है कर लो, नहीं होगी। विकारों की काई, काई पे क्या होते हैं, फिसल जाते हैं। तो एक तो ये पुरुषार्थ चालू करना है धीरे धीरे जितना हो सके, तीन बार जो खा रहे उसको एक दो बार कर दो और दो बार को फिर एक बार, और बाकी सब समय फल फूल हल्का फुल्का। फर्स्ट, विकार बहुत सारे हैं पर एक कमांडर है काम, उसको जीत लिया तो बाकी सभी अपने आप वश में आ जाएंगे, उसको जीत लिया तो बाकी सभी को जीतने की युक्तियां और प्रेरणा आत्मा में स्वतः जागेगी। ये पहला। दूसरा, हम फिसलते कब है, यदि कोई केले का छिलका आ गया या कोई फल आ गया जो पड़ा है रास्ते में, उस पर पैर रखा और फिसल गए। ये कौन सा केले का छिलका है, ये है किसी से प्रभावित हो जाना, किसी के प्रभाव में आ जाना, किसी की वाणी के प्रभाव में, किसी के सौंदर्य के प्रभाव में, किसी के गुणों के प्रभाव में, किसी के नेचर के प्रभाव में। इसका नेचर बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यार करता है, करती है, ये मुझे अपने बहन जैसे लगती है, ये मुझे अपने भाई जैसे लगता है, इसका स्वभाव बहुत मीठा है, ये बोलता बहुत अच्छा है, दिया किसने है, दाता ऊपर बैठा है, प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है, पर व्यक्ति जब प्रभावित हो जाता है किसी से तो उस व्यक्ति में सारा संसार दिखाई देने लगता है। जब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है किसी से तो उसके सारे गुण दिखाई देने लगते हैं और कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है तो खोजने पर भी उसके अवगुण नहीं दिखते उसको। जब व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और जिससे वो प्रभावित हुआ उसके खिलाफ यदि कोई कुछ कह दे तो लड़ने मारने को भी तैयार हो जाता है। प्रभावित होने में मोह जागृत हो जाता है और जिसमें मोह हो जाता है वो व्यक्ति फिर फिसलता है। छपाक, द फॉल। मां है, छोटा बेटा स्कूल से आया ही नहीं, 4 बजे स्कूल पूरी होती है, 5 बज गई, मां निकल पड़ती है ढूंढने, कहां है मेरा बेटा, कहां है, पूछती है, ऐसे ऐसे बेटे को देखा, टाई लगाए हुआ है, स्कूल की ड्रेस है, वो कहता है हां अभी अभी वहां देखा, एक एक्सीडेंट हुआ है। मां भाग कर जाती है, भीड़ है, भीड़ को चीरते हुए जाती है, देखता है एक बच्चा है खून से लथपथ, पर देखते ही मेरा नहीं है, मेरा चैन की सांस, और मेरा होता तो बच्चा भी है और आगे स्टोरी को बढ़ा दो, पहली नजर में देखता मेरा नहीं है, पर थोड़ी देर के बाद देखेंगे अरे ये तो मेरा ही है, सीन चेंज। जिसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना है उसको ये ध्यान रखना है कि किसी से भी प्रभावित नहीं होना, किसी की स्तुति करना अच्छी बात है परंतु वो स्तुति सबके सामने हो, एकांत में बैठ के नहीं, मैसेजेस के द्वारा नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, और फिर धीरे धीरे आई मिस यू, फिर मिलना कहां है, मोहित चित्त, मोहग्रस्त चित्त ईश्वर की ओर बढ़ नहीं सकता, उसे सब कुछ शेयर करने की इच्छा होती है उस व्यक्ति के साथ, जो कुछ मन में चल रहा है एवरी मूड, ऐसा लगता है उसको फोन करके सुनाओ। और जब मनुष्यों से शेयर करना चालू हो जाता है तो भगवान से शेयर करना अपने आप कम हो जाता है, एक घंटा किसी को सुना दिया, अब बाबा के कमरे में क्या सुनाओगे जाके, इधर तो सब उड़ेल दिया अंदर का, उधर क्या सुनाओगे, कुछ भी नहीं। तो छिलके बहुत है रास्ते पर, राम इंटरनेशनल हाईवे है, छिलकों से भरा हुआ, तिरकनबाजी, फूक फूक के कदम रखना, क्योंकि एक बार फिसल गए तो रिकवरी को बहुत टाइम लगता है। और संसार में रहते हुए अगर फिसल गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मधुबन में रहते हुए व्यक्ति स्थिर हो सकता है फटाफट, कमरे में चला गया, कुटिया में चले गए, शांति स्तंभ पर चले गए, भट्टियों में बैठ गए, स्थिर हो गए, स्थिति ऊपर, पर संसार में रहते हुए संसार का वायुमंडल, संसार का वातावरण, चारों तरफ विकार ही विकार, उसमें गिरने के बाद उठना मुश्किल काम है, इसलिए गिरना ही नहीं पहले तो। परंतु हां, अगर गिर भी गए तो बोध हो कि मैं गिरा हूं, फिर लॉजिक नहीं देते रहना कि मैं ही जीसस क्राइस्ट हूं, डूब रहे हैं पर जीसस क्राइस्ट मैं हूं, जिंदा हूं पर मैं ही मरा हुआ हूं, दूसरा तीसरा पिसलते हम तब है, गाड़ी से जा रहे और रास्ते पर बहुत सारी वायर्स रखी रहती है, कभी भी केबल्स, ऊपर की टेलीफोन की केबल्स कभी कभी नीचे गिर जाती है, न्यूज़पेपर्स में आता है पिसल गए, एक वायर थी, तेज गाड़ी जा रही थी और फिसल गए, नेटवर्क ऑफ केबल्स, ये एक कारण है फिसलने का, कौन से केबल्स, इस अध्यात्म मार्ग में हर व्यक्ति अपना एक जाल बनाता है रिलेशनशिप्स का, संबंध, और ये संबंधों की वजह से ही वो फिसल जाता है। बाबा ने कहा है सारे संबंध मुझसे जोड़ो, पर ये कार्य इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हर समय हमें बाप नहीं चाहिए रहता है, कभी कभी ग्रैंडफादर भी चाहिए और ग्रैंड मम्मी भी चाहिए, नानी भी चाहिए रहती है, कभी कभी मां चाहिए रहती है, सब कुछ भूल जाओ अपनी सारी विद्वत्ता और उसकी गोद में चले जाना, ऐसी कोई मां चाहिए जो ज्यादा ज्ञान ना सुनाए, खाली प्यार करे, बाप के पास नहीं जाते ज्यादा, जो निरंतर डंडा लेकर खाली ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जीवन में निराशा आ गई, जीवन में परिस्थिति आ गई, वो बच्चा भी जानता है मैं फेल हुआ हूं, बच्चे को पता है मैं फेल हुआ हूं, और उसको ये भी पता है मैं क्यों फेल हुआ, और वो ये भी सोचता है कि अगली बार नहीं हूंगा। ऐसे समय में वो बाप के पास नहीं जाना चाहता, उसको मां चाहिए जो उसको गोदी में बिठाए और सुलाए, और एग्जाम की तो चर्चा भी ना करे। बाप सुलाएगा परंतु याद तो दिलाएगा। ऐसे अलग अलग संबंध उससे जोड़ना, केवल जोड़ना नहीं, अनुभव करना, नहीं तो संबंध एक जंजाल है, केबल है पूरा। ये यहां देख रहे हो कैसे केबल्स, जंजाल, इधर वायर उधर वायर, किसी का ध्यान ना हो और यहां से चला जाए, ट्रिप, ट्रिपिंग ऑफ, ट्रिप्स, फॉल्स, स्किप्स, ये तीन शब्द अंग्रेजी में प्रयोग किए जाते हैं। ट्रिपिंग गिर जाना, फॉल, स्किप, स्लिप, जो भी संबंध है। कल सुबह अमृत वेला एक काम करना है, बाबा के सामने उस संबंध को रखो, ठीक है, और बाबा से कहो क्या ये संबंध तुमको स्वीकार है, अपने सारे संबंध एक एक करके, पति पत्नी का ये संबंध डू यू एक्सेप्ट, मां और बेटे का संबंध तभी स्वीकार होगा जब उसमें मोह के जर्म्स नहीं होंगे। पूछो क्या ये संबंध तुमको स्वीकार है, बाबा से पूछना, ये एक बहुत सुंदर और सूक्ष्म अभ्यास है। दो भाई रहते हैं, दो बहनें साथ में रहते हैं, सीनियर जूनियर साथी, टीचर स्टूडेंट्स, दो दोस्त, बॉस एम्प्लॉय, पति पत्नी, माँ बाप, जो भी संबंध है, बाबा के कल सामने रखना और बाबा से पूछना कि अब तुम्हें यह स्वीकार है, और बाबा को वही संबंध स्वीकार होगा जो अत्यंत पवित्र है, जिसमें न घृणा है, न नफरत है, न मोह है, न वासना है, ऐसे संबंध। नहीं तो ये संबंध ये जंजाल है जिसमें हम फंसते हैं और फिसल जाते हैं, और फिर समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। बस उसी व्यक्ति की याद घूमती रहती है, चाहे दुश्मनी हो या मोह हो, कुछ भी। तो तीसरा केवल, चौथा कारण फिसलने का, धूल मिट्टी, छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, रेत होती है ना कभी कभी, तेजी से गाड़ी आती है, देखा होगा बाइक लेके कोई आ रहा है, रेत है और फिसल गया। ये जो रेत है, ये जो कंकड़ है, ये जो पत्थर है, ये क्या है, ये जो धूल है, कार्मिक अकाउंट्स, ये भी कारण है फिसलने का। और सबसे बड़ा कार्मिक अकाउंट जो आता है वो है शरीर की बीमारी। बड़े बड़े महारथी भी डाउन हो जाते हैं जब शरीर की बीमारी खींचती है, समझ नहीं आता है करे क्या। असहनीय वेदना, दर्द, पीड़ा, हमने इस जीवन में असंख्य असंख्य ब्राह्मण आत्माओं को देखा है और कड़ी से कड़ी बीमारियों से जूझते हुए देखा है, और उसमें हमने देखा दो प्रकार की आत्माएं, एक वो जिनकी स्थिति और अभ्यास आत्माभिमानी का इतना ऊंचा रहा है कि ये सब बीमारियां उनको कोई प्रभावित नहीं कर पाई। कितने सारे पांडव मन के यहीं के भाई जिनको फिर कैंसर डिटेक्ट हुआ, असहनीय वेदना, कितना समय अस्पताल में थे पर कभी भी उनसे पूछो कोई दर्द, कोई दर्द नहीं। जैसे उस समय एक भाई तो निरंतर यही कहता था, अब बस घर जाना है, अब बस दूसरा छोटा बच्चा बनना है, कोई तकलीफ, वो कहता तकलीफ ये लोगों को है, देखभाल वालों को, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक वो कैटेगरी, और दूसरी वो कैटेगरी, लंबा समय ज्ञान में 30 साल 20 साल 50 साल, परंतु आज बीमारी के समय असहनीय असहाय अनुभव कर रहे हैं, कोई सेवाधारी नहीं है, इससे अच्छा तो शादी कर ली होती, यहां तक के संकल्प, कोई देखने वाला नहीं, दुखी है, इतना दर्द होता है कोई दवाई काम नहीं कर रही है, क्या करे, रात रात गुजर जाती है दर्द में, टूट जाती है, हार जाती है, थक जाती है, मृत्यु का आह्वान करती है कि मौत आ जाए और ले जाए, पर मौत भी आती नहीं है, हमारे चाहने से नहीं होता। तो ये जब आ जाए और अचानक आ जाए जीवन में, अचानक, अभी तक सब ठीक चल रहा था, ऐसे ही पहुंचे, इन्वेस्टिगेट किया, पता है कैंसर है, और बाद में पता चला पूरे शरीर में फैल गया है, चिंता, टेंशन, ये टेस्ट वो टेस्ट, इधर जाऊं उधर जाऊं, स्थिति रहती ही नहीं, बाबा शब्द ही गुम हो जाता है, बाबा भी है आउट ऑफ माइंड, केवल बुद्धि, ये करना है, ये खाना है, वो खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये दवाई लेनी है, वो नहीं लेना है, टोटल हेल्थ कॉन्शियसनेस। पर याद रखना है ये भी होगा, इसलिए दिनचर्या ही ऐसी बनाओ कि कोई बीमार ही ना हो, पहली बात तो। दूसरा, साल में एक बार अपनी सारी चेकिंग कर लो, हमारे पास भाई बहने आते हैं ऐसे ही किसी काम से, पहली बार आते हैं, शुगर 500 600, और उसमें कहते हैं आपको पता था, हाँ पता तो पहले से ही, फिर दवाई क्यों नहीं लेते, कहते बाबा देख रहा है। अभी कुछ समय पहले एक सेवादारी यहाँ का हार्ट अटैक के साथ एडमिट हुआ, यहाँ आए थे सेवा में, हार्ट अटैक, डायबिटीज है, शुगर है, शुगर 400-500 है, क्या ये सब पता है, हाँ है, तो दवाई, दवाई बाबा है ना, भगवान तो है ना, कोई परहेज ना कोई कुछ। तो फर्स्ट, बीमारी नहीं पड़ना, सेकंड, साल में एक बार चेकिंग, और तीसरा, यदि बीमार पड़ गए, यदि पड़ गए सोचना इस अवस्था में क्या करूं, कैसे मन की स्थिति को ऊपर रखूं, कैसे मनसा सेवा करूं, सहनशीलता की शक्ति को कैसे बढ़ाऊं, और आसपास की जो आत्मा है उनकी सेवा कैसे करूं, यदि एडमिट है तो। बीमारियों में क्या क्या किया जा सकता है, क्रिएटिव वर्क क्या क्या किया जा सकता है, एक है दुखी होना, बार बार जो आता है मिलने उसे सब कुछ सुनाते रहना, यहां भी दर्द है वहां भी दर्द है, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो गया, दूसरा आया, क्या हुआ, यहां भी दर्द है वहां भी दर्द है, कोई दवाई काम नहीं कर रही, वो कहे अरे क्या हुआ, तीसरा आया, यहां भी दर्द है वहां भी दर्द है, कोई दवा काम नहीं कर रही, यहां एक रिकॉर्डिंग चालू है, जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अब फ्रैक्चर होते ही लोग आना चालू होते, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ कि मैं ऐसे जा रहा था, फिर गलती उसकी है, वो वहां से आया और फिर फ्रैक्चर हो गया, एक गया दूसरा आया, क्या हुआ, गलती उसकी है, फिर फ्रैक्चर हुआ, अरे क्या हुआ, एक ही दिन में 10 लोग मिलने आते, 10 लोगों को सेम स्टोरी विथ फर्दर एडिशन स्पाइस, मिर्च मसाला डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के, सुनाते रहते सुनाते रहते, और यहां क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग 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 रिकॉर्डिंग, कि मुझे फ्रैक्चर है, मुझे फ्रैक्चर है, मुझे फ्रैक्चर है, मुझे फ्रैक्चर, अब मैं चल नहीं सकूंगा, और गलती उसकी है, ये तीन काम करने हैं, पहला तो बीमारी नहीं पड़ना, दूसरा साल में कम से कम एक बार, और तीसरा चेकिंग, तीसरा अगर पड़ गए तो युक्ति रचनी है, कैसे स्थिति ऊपर हो, सारी किताबें पढ़ो, सारी अव्यक्तवाणियां लगा के रखो लाइन से, जो जो पढ़ने का बाकी था, जो जो लिखने का बाकी था, हमको याद है हॉस्पिटल में रमेश भाई साहब आते थे, रमेश शाह जी, डायलिसिस चलता था, इधर डायलिसिस चालू, इधर कारोबार चालू, इधर डायलिसिस अपनी जगह पर और इधर कंप्यूटर में बैठ के चालू है सारा कुछ सेवा, दूसरे लोगों को देखते दुखी रहते हैं डायलिसिस चालू होते ही, चार चार घंटा बैठे रहो, आते रहो हफ्ते में 3 बार, अपाइज, इनको हमने कभी नहीं देखा, एकदम अलर्ट लास्ट तक। पांचवा, स्लिप गाड़ी तब होती है जब रोड पर ऑयल गिरा रहता है, इंजन ऑयल गिरा रहता है ना, कभी कभी दिखता नहीं है, रोड पर है, जोर से गाड़ी आ रही है और स्लिप। अहंकार भी एक ऑयल की तरह है, ये मैं ही है जो व्यक्ति को गिराता है। पुरुषार्थ भी करता है तो मैं कर रहा हूं, बाकी कोई पुरुषार्थी नहीं है इधर, ये अहंकार भरा रहता है। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, और जो नहीं करते उनके प्रति घृणा का भाव है। ये लोग कुछ नहीं करते, ना चिंतन करते, ना मनन करते, व्यर्थ में रहते हैं। हम देखो कितना श्रेष्ठ चिंतन में रहते हैं, मैं, ये जब तक मैं है स्लिप हो जाती है गाड़ी, ये ऑयल की तरह है, दिखता नहीं है दूर से। मैं की मटकी फूटी और दिल मक्खन मक्खन हुआ, ये मटकी टूटनी चाहिए, नहीं टूटती है तो कम से कम निमित्त। और जो पहली बात पहले कही थी, बाबा के पास दिव्य बुद्धि की चाबी है, यदि किसी की चाबी वो ले लेता है तो वहीं पर उस व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। इसके लिए कभी अपनी उस बुद्धिमत्ता पर भी अहंकार ना हो, ना अपनी सेवाओं पर अहंकार हो। मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनों का कोर्स किया, इतने सेंटर खोले, इतने प्रोग्राम किए, इतने भाषण दिए, इतने सेमिनार दिए, इतने वर्कशॉप किए, इतनी भट्टियां की, इतने अमृत वेला किए, कभी मिस नहीं किया, ये अहंकार आ जाए तो, अगर वो चाबी छीन ले तो गए। युधिष्ठिर ने देखा ये क्या हो रहा है, राज्य में चोरी होने लगी है। ये मैसेज आया उधर से कि अर्जुन को भीलों ने आबू पर्वत के नीचे लूट लिया, ये क्या हो रहा है, राज्य में कुत्ते भौंक रहे, दरवाजों पर ताले लग रहे, पता करो कहां है कृष्ण, पता कराया। कृष्ण तो गए, कृष्ण गए और पांडव शक्तिहीन हो गए। तब पता चला कि हम जो इतने शक्तिशाली थे, हमारी शक्ति नहीं थी, वो पांडव पति की शक्ति थी। हम भी यहां जो इतने शक्तिशाली दिखाई दे रहे, शिव शक्तियां और पांडव सेना, वो शक्ति चल रही है पांडव पति की, और जब उसकी छत्र छाया हट जाएगी तो हम भी गिर जाएंगे। इसलिए अपनी विशेषताओं पर, अपने कर्मों पर और अपनी महानताओं पर अहंकार ना आए। समान में रहना अलग है, परंतु मैं गिरा देगा। मोहम्मद रफी कहते थे, इसमें मेरी क्या बड़ाई, उस अल्लाह ने, उस खुदा ने यह आवाज इस हलक में भरी है। वो चाहता तो यह आवाज किसी भी कंठ में भर सकता था, मेरी क्या बड़ाई इसमें। लोग कहते तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, उस खुदा ने ये आवाज इस कंठ में भरी है। वो चाहता तो किसी में भी भर सकता था। महान वो व्यक्ति इसलिए नहीं था कि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, वो महान इसलिए था कि उसमें वो रियलाइजेशन था, वो विनम्रता थी। हमें महान कर्मों से ज्यादा हमारी भावनाएं क्या है वो बनाती है। तो मैं अगर आ गया तो गाड़ी स्लिप। अगला, फिसलते तब है जब रास्ते पर बर्फ हो, रास्ते पर जब बर्फ जमी हुई जाती है। आपने देखा होगा उधर नॉर्थ में, शिमला या फिर लद्दाख और ये सब एरियाज में रास्ते पर बर्फ ही बर्फ होती है, चल नहीं पाती है गाड़ी। गाड़ियों को चेन लगाते हैं और फिर चलाते हैं, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस होते हैं। कौन सी बर्फ, एडजस्टमेंट इश्यूज। इस यज्ञ में जो एडजस्ट नहीं हो पाते, असंतुष्ट रहते, अतृप्त रहते, बर्फ जैसे जमी हुई है हृदय में, वो एक दिन निकल जाते, स्लिप हो जाती है गाड़ी। बाबा ने कहा संस्कार मिलन की रास करो, वन वन की काठी है, सबके साथ कैसे चलना है, बस यही तो ट्रेनिंग है। किसी एकांत जंगल में जाके कोई बैठे 20 साल तपस्या करे और खुश हो जाए, मैंने क्रोध को जीत लिया, क्या इसको क्रोध को जीतना कहेंगे? एक सन्यासी 20 साल तपस्या करता है, बहुत क्रोधी होता है और खुश हो जाता है, अकेला तपस्या करता है 20 साल, 20 साल में एक बार भी क्रोध नहीं आया, और फिर इतनी खुशी होती है कि मैं क्रोध जीत हो गया अभी तो। और फिर शहर में उतरता है, भिक्षाम देही, वो माता अंदर है, दरवाजे पर एक बच्चा है पालने में, रो रहा है, उसको वो कहते चुप चुप चुप, वो और जोर से रोता है और इतना जोर से रोता है कि सन्यासी अब क्रोध, वो सोचता है मैंने क्रोध तो जीत लिया था, 20 साल में एक बार भी क्रोध नहीं आया, ये कहां से आ गया? क्रोध अकेले में नहीं आता है, संगठन में आता है। किसी को 10 बार समझाओ ये चीज ऐसी करनी चाहिए, उसके बाद भी वो जब गलती करता है, बूढ़ा व्यक्ति बैठा है अपने बेटे से कहता है बेटा ये खिड़की पर कौन है? बेटा कहता है पिताजी तोता बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद पिताजी बूढ़े हैं, कहते बेटा ये कौन है? तो पिताजी तोता बैठा है, बोला ना। थोड़ी देर बाद पिताजी कहते बेटा ये कौन बैठा है? बोल तो दिया एक बार, तोता है, कितनी बार बोलू? थोड़ी देर के बाद फिर तो क्रोध, क्रोध। वो पिताजी एक एक डायरी निकालते हैं और देख कहते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारे बचपन की डायरी है जो मैंने लिखा। एक दिन तुमने मुझे पूछा था जब तुम 4 साल के थे कि खिड़की पर कौन बैठा है, मैंने 28 बार तुमको समझाया था, बताया था कि वहां पर तोता बैठा है और मैं क्रोधित नहीं हुआ था और तुम एडजस्टमेंट इश्यूज। जो भी इस ज्ञान को छोड़कर गए हैं उसका एक ये मुख्य कारण रहा है, कौन सा? एडजस्ट ही नहीं हो पाते। इन लोगों के बीच बाबा, इन निर्गुण हारों में कोई गुण नहीं, ये ज्ञान के बाद का गीत है। ये एक हमारी साधना जो है वो ये वाली साधना है, सन्यासी वाली साधना नहीं है, अकेले में बैठकर की वाली साधना नहीं है, सबके 20 में 20 माताओं के साथ एक कमरे में रहकर भट्टी करके दिखाना, ये है साधना। उसके बाद में अगला पानी, जब रास्ते पर पानी होता है तो गाड़ी फिसल जाती है। अध्यात्म मार्ग पर भी ऐसे पानी बीच बीच में होते हैं और वो पानी है नाम और मान, कि मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने, मुझे सम्मान मिले, जहां मैं जाऊं मेरी वाह वाह हो। और जब हमें कोई पूछता ही नहीं, फीका फीका लगता है जीवन, और हमसे आप अभी भी आए हुए उनको पूछ रहे हैं, जिलसी। अगर हमें लगता है हमसे कोई ज्यादा सेवा कर रहा है तो क्या करना चाहिए? कोई ज्यादा सेवा कर रहा है, एक मार्ग है तो ईर्ष्या करना, ये एक मार्ग है। दूसरा षड्यंत्र करना, बदला लेना, उसको खींचना। कोई अच्छा मार्ग? वो आगे जा रहा है, हमसे आगे जा रहा है, हम पहले से है, वो अभी अभी आगे, और हमसे आगे जाने की जरूरत क्या करे? बेचैन है, क्या किया जाए? उससे आगे बढ़ेंगे, अच्छा ये तो कंपटीशन हो जाएगी। ईमानदारी से आगे जा रहा है परंतु यहां दर्द होता है, पर यहां दर्द होता है उसका क्या, कलेजा दुखता है। मीरा रोए छुपके छुपके, मेरे दर्द ना जाने कोई, कैसे बताऊं पीड़ा, बता भी नहीं सकता कि ईर्ष्या हो रही है, कहेंगे विकार। एक तरफ तो हम दावा करते हैं हम निर्विकारी है, हम में ये ईर्ष्या विर्ष्या कुछ नहीं है, ये छोटे मोटे कुछ नहीं हमको, पर अंदर से दर्द है। एक ये भी सूक्ष्म सिद्धांत समझ लो, अगर कोई किसकी सेवा कर रहा है और बहुतों की सेवा कर रहा है, हो सकता है उसका उनके साथ ज्यादा हिसाब है, इसलिए तो उनकी सेवा कर रहा है, करने दो, वो भी हिसाब चुकतू हो रहा है, वो भी हिसाब चुकतू हो रहा है। देयर इज नो नीड फॉर जेलसी। और दूसरा, नाम मान की इच्छा एक ऐसी इच्छा है, नाम मान में पता नहीं कौन से पोषक तत्व है कि हर एक खाना चाहता है उसको, उससे मिलता क्या है खाके, कौन से न्यूट्रिएंट्स भरे हैं उसमें, रादर उसमें डेंजर ज्यादा है। एक साधारण व्यक्ति मर जाता है तो कुछ नहीं, किसी को पता पड़ता है, और कोई बड़ा मरता है तो हलचल हो जाती है। एक साधारण व्यक्ति कोई गुनाह करता है, चोरी करता है तो किसको क्या लेना देना, पर कोई वीआईपी चोरी करता है फ्रंट न्यूज में आता है, जितना ज्यादा ऊंचा उतने गिरने के चांसेस भी ज्यादा। ये दुनिया जितनी तेजी से ऊपर उठाएगी उतनी तेजी से नीचे भी गिराएगी, ये संसार का दस्तूर है। अमेरिका का एक प्रेसिडेंट भाषण देने खड़ा होता है, हजारों लोग सुनने के लिए, उसका सेक्रेटरी कहता है उससे चुपके से कान में आके, आपको तो पहली पहली बार प्रेसिडेंट बना है, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना इतने लोग सुनने के लिए है। वो कहता है यदि कल यहां पर मुझे फांसी चढ़ाई जाए तो अभी जितने लोग हैं ना उससे दुगुना लोग यहां होंगे। पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, इसके लिए मेरी स्थिति इन पर निर्भर नहीं है, हम आगे, सारी दुनिया हमारे पीछे और हम उसके पीछे, सारी दुनिया हमारे पीछे यदि है तो हम उसके पीछे रहे, बस यही सिद्धांत है। तो नाम और मान, और लास्ट जब लाइट पुअर होती है, लाइटिंग सिस्टम अच्छी नहीं होती है रोड पर, हाउसकीपिंग अच्छा नहीं होता है, तब गिरते हैं, अंधेरा अंधेरा सा रहता है, लाइट्स नहीं है, पता नहीं तेज आ रही है गाड़ी और गिर गए, स्लिप हो जाती है, तिरकनबाजी। अर्थात जब हृदय में कचरा हो, वेस्ट और निगेटिव जिसके हृदय में समाया हुआ है, वो यहां रहना बहुत मुश्किल है, वो कुछ ना कुछ कारण बनेगा और आउट, पुरुषार्थ से गिर जाएगा। तो ऐसी ये आठ बातें, और आठ को छोड़कर ये तो बाहर की बातें, कुछ भीतर की भी बातें हमारी अपनी। जैसे कोई गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा है तो फिसल सकता है, एक, कोई बेहोशी में चला रहा है तो फिसल सकता है, दूसरा, कोई स्किल्स ही नहीं उसको चलाने ही नहीं आता है तो फिसल सकता है, कोई दूसरे को ओवरटेक करना चाहता है तो फिसल सकता है, इसीलिए किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ही नहीं करना है अध्यात्म मार्ग में। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, और हर एक को वही मिल रहा है, ना भाग्य से ज्यादा ना समय से पहले, किसने कुछ भी पाया नहीं है। और यदि हमें लगता है कोई असत्य के मार्ग पर चल रहा है और फिर भी बहुत तेजी से चल रहा है और बहुत प्रशंसा हो रही है, एक बात को भूलना नहीं है, असत्य की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं, असत्य की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं, सीधा डूबेगी एक दिन। इसलिए अचल डोल अपनी स्थिति में, अपने सत्य में। तो गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इस मार्ग पर हम चल रहे हैं और तेजी से चलना है, कंसिस्टेंटली चलना है, जरूरी नहीं बहुत तेज चलो, पर धीरे भी चलो तो बस चलते रहो, रुको मत, बस वो महत्वपूर्ण है, और फिसलना नहीं, नहीं तो ये स्लिपरी पाथ हमें कहां से कहां पहुंचा देगा। अगर गिर भी गए अब फिर से उठो, और ये अवसर आप सबको मिला है इस भट्टी में आने का। पिछले 6 मास में जीवन में क्या क्या हुआ उसकी स्टडी करो, और थोड़ा पीछे जाओ 1 साल, और थोड़ा पीछे जाओ 2 साल, जब तक यहां है एकांत में जितना हो सके उतना रहकर अपने आप को देखो, और जाने से पहले वहां की क्या प्लानिंग करनी है वो करके जाओ यहां बैठते हुए। अच्छा, ओम शांति।